मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 27 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह स्वागत मैं आपका कर रहा हूं 3 दिनों के बाद और स्पीच आपने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया होगा, त्योहार मनाया होगा, पर्व मनाया होगा, या यूं कह लीजिए कि व्रत रखा होगा, पूजा आराधना की होगी। मुझे यकीन है कि शिव जो अपने आप में शक्ति और ऊर्जा के अद्भुत प्रमाण माने जाते हैं, माइथोलॉजिकली भी और चेतनागत भी, तो कुछ न कुछ वो ऊर्जा के कण आपने अपने अंदर भी डेफिनेटली हासिल किए होंगे। और सच पूछिए तो हमारे जितने भी धर्म परंपराएं, उत्सव, त्योहार, व्रत, उपवास, जितने भी ये सब हैं, इनका उद्देश्य ही है अपने आप को अधिक बेहतर बनाना, अपने आप को अधिक ऊर्जावान बनाना। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए जो मैंने विषय चुना है दोस्तों, वह विषय है वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर। ग्लोबलाइजेशन का विषय मैंने क्यों चुना, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं। और स्पष्ट करने के पीछे मेरी धारणा यह है फ्रेंड्स कि आपके अंदर भी वह कैपेसिटी पैदा हो सके कि कैसे हम किसी टॉपिक को इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं पर्टिकुलर ईयर के लिए। हो सकता है कि जो टॉपिक इस साल महत्वपूर्ण लग रहा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण न हो, और यहां तक कि पिछले साल जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था, इस साल उसकी ज्यादा अहमियत न रह गई हो। देखिए, करंट अफेयर्स के मामले में तो ऐसा ही होता है। हाँ, जो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट के हिस्से हैं उसमें डेफिनेटली हम ज्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते, लेकिन दोस्तों जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है, वो अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसे भी आप एक प्रकार से अनिवार्य जैसा मान लीजिए, जो हर साल अनिवार्य है। अनिवार्य इस मायने में है कि आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देखिए, आपको जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि मैं 2013 के बाद की बात कर रहा हूं, कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जिस साल ग्लोबलाइजेशन पर क्वेश्चन न पूछे गए हों। हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब हम 2016 का पेपर देखते हैं, जो लेटेस्ट पेपर है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर हमें ज्यादा सही ट्रेंड बताते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड आगे चलता है वो लेटेस्ट से ही सूत्र वो पकड़ते हैं। पुराने ट्रेंड को वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को फॉलो तो करते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा निकटता उनमें नहीं होती। और अगर आप 2016 का पेपर देखेंगे तो आपको देखकर ये बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि 3 क्वेश्चन केवल वैश्वीकरण से पूछे गए हैं। और इससे भी सुखद आश्चर्य, या यूं कह लीजिए कि सिर्फ आश्चर्य, इस बात को लेकर होगा कि जनरल स्टडीज के पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया है, जनरल स्टडीज के पेपर सेकंड में भी पूछा गया है, और जनरल स्टडीज के पेपर थर्ड में भी पूछा गया है। यानी कि टॉपिक एक, और सोचिए कि वो पसरा हुआ है 3 पेपर तक। अब फर्स्ट पेपर हमारा हिस्ट्री, इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मतलब मेन तो ये 2 टॉपिक है आप कह लीजिए इस पर है। सेकेंड पेपर हमारा गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस पर है। थर्ड पेपर हमारा इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब पर जरूर है। अब आप देखिए कि वो हिस्ट्री कल्चर से लेकर के जो उसका फैलाव है वो आपके इकोनॉमी तक है, और फोर्थ पेपर में भी अगर इस पर सवाल पूछ लिया जाए तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। आखिर में ऐसा क्यों है, पहले इसको समझना होगा, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप वैश्वीकरण को एक व्यापक नजरिए से देख पाएंगे। अदरवाइज देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सीधे सीधे इकोनॉमिक का विषय है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई और इसका बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य था कि अभी सभी दुनिया के बाजार अपने अपने में सटे हुए हैं, सभी अपने यहां के बाजार को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने यहां की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया के बाजार एक हो जाए, अपने इंडस्ट्री और अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने की जो नीति है उसे खत्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया एक बन जाए और सब खुले रूप में, जहां जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी क्षमता है, प्रतिस्पर्धा में जो जितना टिक सकता है उतना वहां जाकर वह व्यापार करे। सिंपल सा उद्देश्य था। तो उद्देश्य तो व्यापार ही है, आप देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर व्यापार उद्देश्य है तो स्वाभाविक है कि जो ये टॉपिक है ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कह लीजिए, और वो आपके थर्ड पेपर का पार्ट है। तो फिर फर्स्ट पेपर में भी है, सेकेंड पेपर में भी है, थर्ड पेपर में भी है और फोर्थ पेपर में भी यह हो सकता है। कोई ताज्जुब नहीं, होना ही चाहिए, हो सकता है कि इस बार हो, क्योंकि इसका फैलाव वहां भी है। और वैसे भी मैं भी आपको बताऊंगा कि जो कहीं ना कहीं सेकेंड पेपर में जो मेंशन किया हुआ है वो एक तरह से फोर्थ पेपर जैसा ही है। फोर्थ पेपर यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है। मित्र, मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन पर तैयारी करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी ये जानना है कि इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप समझ लेंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी आप सही मायने में इसकी जो ताकत है, इसका जो फैलाव है तीनों चारों पेपर तक, उसको समझ पाएंगे कि इसमें क्यों आ गया। और तभी आप जब अखबार में या किताबों में इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, तो उसको कम से कम इस तीन चार कोणों से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ये कहां है निहित है, ये कहां निहित है, ये कहां निहित है। अदरवाइज होता क्या है कि हमारी जो आदत है, आदत ही हमारी कुछ इस तरह से पड़ गई है कि हम किसी भी एक टॉपिक को एक विषय से जोड़ लेते हैं और फिर उसमें जो कुछ भी तलाश करते हैं या उस टॉपिक पर जो विचार करते हैं, सच पूछिए तो उस पर्टिकुलर उसी एक एंगल से ही करते हैं, जबकि उसके मल्टी एंगल्स होते हैं, उसका डायमेंशंस बहुत व्यापक होता है। तो आज सच पूछिए तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इसी तथ्य को मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाह रहा हूं और आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ी सी एक नजर मार लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर, राइट। अब आप देखिए कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट पेपर में प्रश्न है फ्रेंड्स, 12.5 नंबर का प्रश्न है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है और बड़ा सरल है, बड़ा प्यारा है और मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और वो ये है कि वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरक, ब्रैकेट में दिया है, कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन। संस्कृति से जोड़ दिया है, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव भारतीय संस्कृति के अंतर, मतलब उसका जो बहुत ही मर्म है, जो बहुत ही उसका गहन मूल तत्व है, सार है, उसको कहां तक प्रभावित किया है। आप देख रहे हैं, यह संस्कृति का हिस्सा हो गया। और चूंकि फर्स्ट पेपर में आपकी संस्कृति है तो उसको वैश्वीकरण से जोड़ दिया, करेंट भी बना दिया और फिर एक्सप्लेन करने की भी बात कह दी कि इसे आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कहां तक। शुरू में देखिए शब्द दिया कहां तक, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं कहीं तक भी नहीं है, या लग रहा हो कि पूरी तरह से उलट फेर कर दिया है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। यहां देखिए ये कल्चर का पार्ट बन गया है वैश्वीकरण। आइए अब जनरल स्टडीज के सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्योंकि कैसे पार्ट बना है सेकेंड पेपर का। सेकेंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, ये भी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, 12.5 नंबर का है। आप देखिए कि उसमें क्या पूछा गया है। और सेम ईयर 2016 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन्वर्टेड में है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर विचार कीजिए जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं फ्रेंड्स। इन द इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया स्टैंड्स वेरी लो। डिस्कस ब्रीफली द लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट हैव कॉज्ड द डिक्लाइन ऑफ पब्लिक मॉरलिटी इन इंडिया, 12.5 नंबर। अब आप देखिए कि पब्लिक मॉरलिटी की यहां बात करती है, सार्वजनिक नैतिकता। अब वैसे देखेंगे तो आप सार्वजनिक नैतिकता का संबंध सीधे सीधे फोर्थ पेपर से होना चाहिए, क्योंकि वहां नैतिकता एथिक्स है, तो ये सेकेंड पेपर में क्यों डाल दिया है? मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से अनसॉल्व्ड पेपर को देखें तो थोड़ा सा रुक कर विचार करना चाहिए, आपको प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि भाई ये यहां क्यों आ गया। क्या आप कोई इसका तर्क निकाल सकते हैं, इसके औचित्य को सिद्ध कर सकते हैं? औचित्य को सिद्ध कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब आपके दिमाग में अपना सिलेबस पूरी तरह से रच बस गया हो। और जो रचने बसने की मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसा नहीं है कि आपको याद हो गया हो। रचने बसने का मतलब है कि अच्छी समझ आपकी हो गई हो, पकड़ भी नहीं, अच्छी समझ हो गई हो। जैसे आप देखिए कि आपके सेकेंड पेपर का आप टाइटल ही देखेंगे तो उसमें एक शब्द है गवर्नेंस, राइट? अब जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस में कौन लोग आते हैं? सिविल सर्वेंट्स आते हैं गवर्नेंस में, यहां तक कि टू सम एक्सटेंट पब्लिक भी आती है। पब्लिक को भी बेटर बनना पड़ेगा, उनको भी गुड बनना पड़ेगा, तो वो गुड गवर्नेंस को कर सकेंगे। और अगर वो डेमोक्रेसी पैटर्न में है, जो इंडिया के का सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक है पॉलिटिकल सिस्टम, तो बट नेचुरल है कि उनको अपनी ताकत को समझनी होगी। और जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप देखिए कि उसमें होता है कि पब्लिक कितनी अवेयर है अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, तो वो गुड गवर्नेंस के लिए फोर्स कर सकती है, यानी कि प्रेशर ग्रुप, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन गुड गवर्नेंस। तो अब ये जो गुड कैसे आएगा, बट नेचुरल है कि अगर नैतिकता का हास हुआ है तो गुड नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये गुड गवर्नेंस का पार्ट बन जाता है, यानी कि इन टोटल गवर्नेंस का पार्ट बन जाता है। तो सेकंड पेपर में भी उन्होंने इसको पूछ लिया, इसलिए कभी ये मत समझिएगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। और फ्रेंड, यहां नैतिकता की बात हो रही है, फोर्थ पेपर का पार्ट तो है ही है। फोर्थ पेपर में अगर पूछ लिया जाता है तो क्या आश्चर्य है? कोई भी आश्चर्य नहीं है। आप देखेंगे कि नैतिकता पर, आत्मा पर, चेतना पर, भ्रष्टाचार पर, इन पर सवाल पूछे जाते हैं फोर्थ पेपर में। अब आप देखिए कि थर्ड पेपर में क्या है। और दोस्तों, थर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? इंग्लिश में है, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डिटरमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? 12.5 नंबर का। दोस्तों, अब आप देखिए कि सीधे इकोनॉमिक्स से जुड़ गया है ये, पूरे के पूरे रोजगार से इन्होंने जोड़ दिया है, और रोजगार से इससे पहले भी क्वेश्चंस वैश्वीकरण को लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर एक टॉपिक आपको तीन क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में, आउट ऑफ 60, अभी मैंने 60 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल, तीन पेपर में 60 पूछेंगे, और उसमें से तीन क्वेश्चन एक टॉपिक प्रोवाइड कर रहा है जो इतना वेल नोन टॉपिक है, इतना कॉमन टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत जरूरी है कि आप उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने और समझने की कोशिश करें। यह सिर्फ इकोनॉमी का एंगल नहीं है, रोजगार का एंगल नहीं है, आर्थिक वृद्धि का एंगल नहीं है, है ना, ये चौतरफा विकास या विनाश या हास्य पतन, जो भी आप कह लीजिए, सबका एंगल है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपसे जो कहना चाहूंगा आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, कि प्लीज आप वैश्वीकरण के टॉपिक को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हुए और उस पर चौतरफा तैयारी करें। अब सेकेंड पॉइंट पर आता हूं, इस साल के लिए क्या है? इस साल के लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है, नो डाउट कि 2016 के एग्जाम से पहले, अभी 2016 का जब ये मेंस हुआ जिसके प्रश्न मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए हैं, इससे पहले ब्रेक्जिट हो चुका था, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से निकलने का फैसला कर लिया था, जिसको वैश्वीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा नकारात्मक कदम माना गया था कि अब ग्लोबलाइजेशन को बचाना शायद मुश्किल होगा। इसके बाद, इससे पहले ट्रंप भी चुनाव जीत चुके थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी जब कहते हैं कि अमेरिका ही सब, मतलब उनके लिए अमेरिका ही प्रथम है, अमेरिका ही सब कुछ है, तो बट नेचुरली कि उनका ये वक्तव्य भी वैश्वीकरण के विरुद्ध है। और चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। ये बात अलग है कि फिर 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने औपचारिक भाषण में इसे कहा, और अब तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। तो यानी कि वैश्वीकरण के विरुद्ध ये जो दो उसको ठोकर देने वाली जो घटनाएं घटी हैं, ये 2016 के पहले घट चुकी थी, इसीलिए शायद उसके इतना महत्व भी दिया गया है। अब जो घटनाएं जो घटेंगी मित्रों, और आपको किस एंगल से इस टॉपिक को लेकर के चलना है, उसमें आप पाएंगे कि अब ये जो दो देशों ने, ब्रिटेन और अमेरिका ने जो कदम उठाया है, जो कदम उठाए हैं अपने अपने देशों में, आप देखेंगे कि इसी के समानांतर छोटे या बड़े कदम दूसरे देश उठाना शुरू करेंगे, होगा ऐसा, उठाना शुरू करेंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि दुनिया के जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में अब कहीं न कहीं एक तरह की राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा होंगी, चाहे आप उसे नेशनलिज्म कह दीजिए, राष्ट्रवादी भावनाएं कह लीजिए, हो सकता है कि कहीं कहीं ये उग्र राष्ट्रवाद का भी रूप ले ले, मतलब एक अति राष्ट्रवाद जिसको कह लीजिए कि हमारा ही देश सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है, इसे आप उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है अपने साल भर के प्रिपरेशन में कि इस तरह की कहां कहां हरकतें होनी शुरू हो गई हैं, ये आपको देखना होगा, क्योंकि अब लगभग लगभग ये दिखाई देने लगा कि स्पेशली यूरोप में, आप सोचिए कि जो इतना डेवलप्ड कंट्री है, जो अपने को बड़ा सेक्युलर स्टेट कहता है, जो वैज्ञानिक चेतना वाले होने का दावा करता है, वहां भी अब पॉलिटिकल लेवल पर जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोकप्रिय होती जा रही हैं। और ये खतरा दिखाई देने लगा है कि यहां तक कि इटली, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इन सब देशों में भी ये जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं ये आगे के चुनाव में सत्ता में आ सकती हैं। और ये मान करके चलिए फ्रेंड्स कि अगर ये राष्ट्रवादी पार्टियां वास्तव में सत्ता में आ जाती हैं तो एक हवा चलेगी, एक ट्रेंड चलेगा, दुनिया के दूसरे देशों को भी आखिर में इसका प्रतिरोध तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत अपना मार्केट तो अमेरिका के लिए खोल दे कि आइए हम तो 125 करोड़ से ऊपर लोग हैं, अपने हमारे बाजार में आप चीज बेचिए, और अमेरिका अपनी सीमाएं हिंदुस्तान के लिए बंद कर दे कि नहीं आप हमारे मार्केट में नहीं आ सकते, यानी कि आपके इंजीनियर्स, आपके प्रोफेशनल्स हमारे यहां आकर के काम नहीं कर सकते, तो फिर भारत को भी उसके प्रतिरोध में कुछ इसी तरह का कदम उठाना पड़ेगा। और जब इसी तरह के कदम उठने शुरू हो जाएंगे तो आप सोच करके देखिए कि फिर वैश्वीकरण की स्थिति क्या हो रहेगी। और दोस्तों ये तो चलिए एक मैंने आपको विश्व राजनीतिक स्तर की बात की, सच्चाई में क्या हो रही है, हो रहा है, देखिए जब 1991 के आसपास आप 1990-91 के आप पेपर उठा करके देखेंगे, मैगजीन्स उठा करके देखेंगे, हम लोग तो उस दौर में रहे ही हैं, तो वहां देखिए कि जब वैश्वीकरण की बात होती थी कि भारत को शामिल होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं होना चाहिए, तो कसीदे काढ़े जाते थे कि अरे अगर भारत शामिल हो गया तो फिर भारत के लोगों को रोजगार की कमी नहीं रहेगी और दुनिया भर का उसका व्यापार बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और भारत को दुनिया भर की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हमारे पास तो इतनी श्रम शक्ति है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो 8-10% के करीब हो जाएगी, विश्व को तब महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ऐसा लग रहा था जैसे एक ऐसी जादू की छड़ी घूमने वाली है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, स्पेशली आर्थिक समस्या, उनका समाधान हो जाएगा। उस समय क्या आप अखबार उठा करके देखिए, मतलब विरोध करने वालों में केवल कुछ ही लोग थे, कुछ लोग थे जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक पार्टियां थी, जो खासकर टेक्नोलॉजी के आधार पर, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो बेरोजगारी फैल जाएगी और अगर वैश्वीकरण होगा तो हाई टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसको लेकर के वो चिंतित होते थे, वो इस बात को लेकर के भी चिंतित होते थे, और कुछ अर्थशास्त्री भी उसमें शामिल थे कि बाहर के लोग आएंगे, उनका पैसा आएगा, तो पैसा आने के बाद फिर वो टेक्नोलॉजी और हाई, फिर वो हमारे रोजगार को कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो तो हाई टेक्नोलॉजी है तो उनको लोग चाहिए नहीं, फिर हमारे देश का पैसा विदेश में चला जाएगा, इसीलिए वो एक तरीके से द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद भी कहते थे कि एक समय में उपनिवेशवाद सीधे सीधे आया जब दुनिया के दूसरे देशों ने आकर के हमारे देश पर कब्जा कर लिया, जैसे ब्रिटेन उपनिवेश बना लिया। अब वो वैश्वीकरण के रास्ते से घुस रहा है, ग्लोबलाइजेशन के रास्ते से घुस रहा है, छद्म रूप में घुस रहा है, लेकिन हमें गुलाम बना लेगा। तो ये तथ्य भी होते थे, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी थी। हमने स्वीकार कर लिया और इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि हो जाने के बाद, वैश्वीकरण के बाद धीरे धीरे जो है ना आर्थिक विकास होगा और गरीबों तक पहुंचेगा। लेकिन मित्रों, अब जबकि हो चुका है 25-26 साल उसके हो चुके हैं, 91 में हमने स्वीकार किया था, अब 26 साल होने जा रहे हैं, दिखाई क्या दे रहा है भारत का? आप जान रहे हैं जो मैंने आपको प्रश्नों में भी प्रश्न में भी वो चीज झलक दी है कि रोजगार की स्थिति नहीं बनी, हमारे आंतरिक कोर को उसने प्रभावित कर दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया, ये सब उसी के लक्षण पूछ रहा है ना। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या दिखाई देता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर की आप रिपोर्ट उठा करके देखिए। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि जनवरी मिड में ही जो ब्रिटेन की एक संस्था है ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट दी थी विश्व अर्थव्यवस्था पर, और उसमें क्या रिपोर्ट दी, चौंकाने वाली, ये कह दीजिए कि दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है। और उसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया के 1% अमीरों ने, 1% दुनिया के जो सबसे टॉप पर अमीर हैं, उतना पैसा कमा लिया इन 25-26 सालों में जितना कि दुनिया के 50% गरीबों ने भी नहीं कमाया। इसका साफ मतलब है, जो तथ्य निकल रहा है, कि जो ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली अमीरों के पक्ष में है, गरीबों के पक्ष में नहीं। बल्कि रिपोर्ट आ रही है कि जो निचले तबके के जो लोग हैं वो एक तरीके से और गरीब होते चले गए हैं। नीचे तबके के लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि ऊंचे तबके के जो 1% अमीर हैं उनकी आय में 300% वृद्धि हुई है। तो आर्थिक असमानता तो बढ़ती चली जा रही है, जो कहा जा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन इस आर्थिक असमानता को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, इसको लेकर के भी फिर विवाद पैदा होंगे, विरोध पैदा होंगे। तो इन सब एंगल से अब आपको आगे की तैयारी करनी है, और नो डाउट कि जो सांस्कृतिक पक्ष है और जो अभी मैंने आपको प्रश्न पढ़कर सुनाए हैं उनको तो लेकर चलना ही है, लेकिन ये नया एंगल भी आपको जोड़कर चलना होगा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एंगल। तो मित्रों, अब वक्त हो चुका है और मुझे आप सबसे इजाजत लेनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि जितनी भी चर्चा हम लोगों ने इसके अंतर्गत की है वो आपको इस दिशा में मेच्योर बनाने में, इस टॉपिक पर मेच्योर बनाने में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मित्रों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।